समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा में। मैं हूं सरफिरोजी और मेरे साथ हैं लालिमा अनेजा डैंग। श्रोताओं, रोजाना की तरह आज भी परिक्रमा में हम आपके लिए लेकर आए हैं पूरे दिन की हलचल, लेकिन उससे पहले आप सभी को गणेश अनंत चतुर्दशी की शुभकामनाएं। श्रोताओं, गणेश उत्सव आज पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और लालिमा जी, हम आगे भी प्रोग्राम में बात करेंगे कि कैसे पूरे देश में बप्पा को विदाई दी जा रही है और कामना की जा रही है कि अगले साल वो फिर खुशियां लेकर लौटे, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम की शुरुआत की जाए।
बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद सरफिरोजी। आप सब श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार एंड गुड आफ्टरनून एंड अ वार्म वेलकम फ्रॉम माय साइड एंड वेल शी इंट्रोड्यूस लेट मी इंट्रोड्यूस वंस अगेन। आई एम लालिमा अनेजा डैंग एंड विद मी इज माय को-होस्ट सरफिरोजी एंड फ्रेंड्स, वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज इन आवर प्रोग्राम। वी ऑल्सो हैव अ सेगमेंट विच इज अ डिस्कशन सेगमेंट, इट्स कॉल्ड Dateline India. We have some reports, some capsules, some tributes, and much, much more. So I hope you are waiting with bated breath for us to start the show right away. Let's get going. Yes, Sarfirozi.
जी लालिमा जी, सबसे पहले headlines की बात कर लेते हैं।
जी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भावनाओं और भारत अमेरिका संबंधों के सकारात्मक आकलन की सराहना करता है और पूरी तरह से उनका समर्थन करता है। श्री मोदी ने कहा, दोनों देशों के बीच भविष्योन्मुखी व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है।
फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन सेज, इंडिया विल कंटिन्यू टू बाय रशियन ऑयल गाइडेड सोली बाय नेशनल इंटरेस्ट।
प्रधानमंत्री मोदी बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा कर स्थिति की समीक्षा करेंगे।
और चारधाम यात्रा रिज्यूम्स इन उत्तराखंड, पिलग्रिमेज टू गंगोत्री एंड यमुनोत्री रिमेन सस्पेंडेड।
वहीं देश के कई हिस्सों में 10 दिनों तक चलने वाला गणेश चतुर्थी उत्सव आज मूर्ति विसर्जन के साथ संपन्न हो जाएगा।
एंड इन द यूएस ओपन टेनिस, जानिक सिन्हा डिफीट्स ओगर अलियास्मी टू सेट अप फाइनल क्लैश विद कार्लोस अल्कराज। And friends, now it's time for our discussion segment. It's called Dateline India. You must be familiar with it. Well, all the friends who are tuned into Parikrama and often tune in, you must be familiar with it. Well, let's take a look at the developments at the national or global level. And today, what is actually taking the country by a storm, a good storm, is the GST discussion. India's indirect tax system is undergoing its most significant overhaul since the GST was first implemented 8 years ago. Well, on the Independence Day, from the ramparts of the Red Fort, our Prime Minister, Mr. Narendra Modi, had announced the next generation of GST reforms. Do you remember, Sarfiroz?
Ji, bilkul.
And so the Prime Minister's vision of creating a more efficient and citizen-friendly economy was realized as the GST Council last week simplified the indirect tax system into a two-tier structure of 5% and 18% from the earlier four-tier structure of 5, 12, 18 and 28%. And well, friends, GST reforms have been carried out with the focus on the common man and ensuring ease of doing business. And I strongly feel that when you talk about ease of doing business, it also leads you gradually to ease of living. And when we talk about the ease of doing business, it particularly includes small traders and businessmen. And friends, this announcement has come at a time when the Indian economy faces multiple challenges, including slowing global trade and the recently imposed, yes, very important, recently imposed 50% tariff by the United States on a wide range of Indian exports. Well, friends, the simplification of tax reforms will come into effect from the 22nd of this month.
जी बिल्कुल लालिमा जी, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि अगर भारत को विश्व वैश्विक स्थिति के साथ लाना है तो बदलाव जरूरी है। और जब उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जीएसटी सुधारों की, जीएसटी रिफॉर्म की घोषणा की थी, तो इन्हें अगली पीढ़ी के सुधार बताया था। और इन सुधार का एक प्रमुख उद्देश्य आम परिवारों, खासतौर पर मध्यम वर्ग जो उपभोग को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इस वर्ग पर वित्तीय बोझ को कम करना था। इससे रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं और पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर कर कम होंगे, जिससे घरेलू खर्चों में बचत होगी। वहीं एसी, डिशवॉशर और टीवी पर जीएसटी दर में कटौती को दोहरी जीत बताया जा रहा है और माना जा रहा है कि ये भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करेंगे। और लालिमा जी, हमने बात करा कि जीएसटी सुधार में जो फोकस कहीं ना कहीं वो इस बार कॉमन मैन भी रहा।
बिल्कुल
जी। तो जीएसटी सुधारों के अंतर्गत घरेलू आवश्यक वस्तुओं जैसे साबुन हो, टूथपेस्ट हो या ब्रेड्स वगैरह हो, इन पर भी 5% की कटौती की गई है, जिससे आपने भी बात की कि ईज ऑफ लिविंग यानी जो लाइफ की गुणवत्ता है वो बेहतर होने की उम्मीद है।
यस, बिकॉज दीज आर नेचुरल एवरीडे कंजम्पशन गुड्स, यू नो, इट्स अ ह्यूज मेनी गुड्स हैव बीन, यू नो, द जीएसटी हैज बीन रिड्यूस्ड। लेट्स टॉक अबाउट दोज लाइक लर्निंग मटेरियल्स लाइक मैप्स, चार्ट्स, ग्लोब्स, नोटबुक्स, पेंसिल्स, क्रेयॉन्स, शार्पनर्स, पेस्टल्स एंड इरेजर्स हैव बीन fully exempted from GST, so children can rejoice that. Well, the parents should be happy about it. Children would know what has come down and what hasn't come down. And the GST council also provided significant relief to the agricultural sector, and which was really badly needed, because as we know that the global economy is slowing down and we need to give a little fillip to our agricultural sector, particularly for the fact that in India many farmers, especially small, there are many farmers with small holdings. Gee. And they are dependent on agriculture. So tax rates on tractors, agricultural machinery, harvesters, threshers and other farm equipment has been significantly reduced, and this will lower our farmers' expenses and make agricultural production cheaper and strengthen फार्मर बेस्ड इकोनॉमी।
बिल्कुल लालिमा, और पर्सनली जो चीज मुझे जीएसटी रिफॉर्म्स की सबसे ज्यादा अट्रैक्ट हुई वो ये था कि अब जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उन पर जीएसटी दर में बहुत कटौती की गई है। उन्हें 12 से घटाकर या तो 0 पे ले आया गया है या फिर 5% कर दिया गया है।
जी जी।
इसके अलावा स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसी प्रीमियम जो है उनको जीएसटी से बाहर रखा गया है।
जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और उसके अलावा दिस सिग्निफिकेंट टैक्स रैशनलाइजेशन, एज वी आर कॉलिंग इट, it's expected to boost the dairy sector, Safirozi, and it'll extend, as I just said, benefits to both farmers and consumers. And it is expected that this reform will directly benefit over 8 crore, yes, 8 crore rural farmer families, especially, as I mentioned, the small, marginal and landless laborers engaged in rearing milch animals for their livelihoods. You know, when we support the dairy sector, there are about 8 crore rural families who are dependent on the dairy sector. Hamare yahan pashu ko pashu dhan bolte hain na, Sir Ferozi, aur kisi desh mein pashu ko dhan nahi bolte, kyunki pashu waqai kisan ke liye dhan hai aur ek parivar ka hisse ke jaisa hai. To uske doodh aur uski product se jo wo kamata hai, usko pyar se rakhta hai, parivar ki tarah rakhta hai, to usko us income bhi milti hai.
Ji bilkul. Aur ek nazar agar auto मोबाइल सेक्टर पे भी डाले लालिमा जी, तो नए सुधारों के तहत छोटी कारें या मोटरसाइकिलें हैं, उम्मीद है ये काफी सस्ती हो जाएंगी, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग पर जो है वो आर्थिक बोझ कम होगा। और छोटी कारों और 350 सीसी से कम क्षमता वाले दोपहिया वाहनों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है, और लग्जरी वाहनों पर अब 40% जीएसटी लगेगा।
यस फ्रेंड्स, द रेट रैशनलाइजेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज एक्सपेक्टेड टू soften prices, and assuming that it will create room for a rate cut by the Reserve Bank of India's Monetary Policy Committee, MPC, according to economists. We must also not forget that the council has decided to raise the GST rate on coal from 5% to 18%, even as the compensation cess of 400 rupees per ton was withdrawn. So this is expected that this will take people towards cement and steel, and it will also give a boost to the power generators, particularly in the renewable energy sector, because coal pe agar hum dependency thodi kam karenge, baki hamare raw material hai, usse jo bijli bante hai, uspe us taraf jayenge.
जी, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा था कि ये सुधार अगली पीढ़ी के सुधार होंगे, और इस कदम का उद्देश्य व्यवसायों के लिए अनुपालन को आसान बनाते हुए सामर्थ्य, उपयोग और आर्थिक दक्षता को बढ़ावा देना है।
So So as we assume that in the coming festival season, people will really, it'll be a festival to the power of infinity, because it'll give them a lot of happiness, because this, you know, this time the festival comes with reduced prices. 22nd September is the first day of Navratri.
Prime Minister Modi ne bhi haan bilkul yahi kaha tha ki Navratri ke pehle din se hi ye sudhar lagu hone wale
hain. So that hope we move on. Yes, now.
जी बिल्कुल लालिमा जी, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और जानने का कि उनके पास क्या खास जानकारी है.
Yes, friends, and with a view to foster national integration and promote patriotism amongst all sections of society, the government of India is organizing programs such as Bharat Darshan and Ek Bharat Shreshth Bharat. And friends, for the first time in Mizoram, the Border Security Force has organized a six-day Bharat Darshan tour for students of Mizoram. Here we have more from our Aizawl correspondent, Isaac. Let's listen in.
Mizoram Governor General retired Vijay Kumar Singh flagged off a group of 100 students accompanied by 8 teachers and tour guides from Raj Bhavan in Aizawl on September 3rd for a Bharat Darshan tour to Delhi. The program is organized under the aegis of the Ministry of Home Affairs and facilitated by the Border Security Force, BSF. In his address, the governor expressed gratitude to the central government, DMHA and BSF for initiating this meaningful program for students from Mizoram. He described the Bharat Darshan tour as a commendable and well-planned endeavor, acknowledging the efforts of all stakeholders in ensuring its success. Highlighting India's vast diversity, he said that despite the country's many cultures, language and communities, it remains united and harmonious.
It makes us proud that there is a country which has got different cultures, different languages, different type of people, and yet we are one.
This year's Bharat Darshan Tour comprises 100 students and 8 teachers from 8 schools across 4 districts, namely Aizawl, Lunglei, Mamit and Saitwal. The 6-day tour from September 3rd to September 8th will include visits to historical sites, cultural and heritage landmarks, government offices, museums, etc. in Delhi. With Gingangte, this is Isaac, Akashvani News, Aizawl.
So that was great. It's nice to have exchange, cultural exchange between two communities, between two cultures, between two regions, isn't it?
बिल्कुल कहते हैं लालिमा जी कि परंपराओं के बीच कोई सीमा नहीं होनी चाहिए. और श्रोताओं, आपको लेकर चल रहे हैं गुजरात, जहां राज्य में निजी स्कूलों की तुलना में सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है. आमतौर पर सरकारी स्कूलों को लेकर लोगों की अलग अलग धारणाएं होती हैं. हम अक्सर देखते हैं लालिमा की बहुत हीन भावना से कहीं ना कहीं देखा जाता है कि प्रीमियम एजुकेशन नहीं मिल रही होती है अब सरकारी स्कूलों में. लेकिन अमरेली जिले के ईश्वरिया गांव के प्राथमिक स्कूल ने इन सभी धारणाओं को गलत साबित कर दिया है. ये स्कूल बेहतरीन सरकारी स्कूल का आदर्श उदाहरण बन गया है. आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट.
अमरेली जिले के ईश्वरिया गांव की प्राथमिक स्कूल ने पूरे जिले में विशेष पहचान बनाई है. आज इस गांव ही नहीं बल्कि अमरेली समेत जिले के विभिन्न इलाकों से भी विद्यार्थी स्कूल में पढ़ने आते हैं. यह इस बात का प्रमाण है कि उचित प्रयास, प्रबंधन और शिक्षकों के बेहतरीन कार्य से सरकारी स्कूल भी निजी स्कूलों को पीछे छोड़ सकती है. ईश्वरिया गांव के एक छात्र ने इस स्कूल को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करते हैं, वे उन्हें समझाकर और प्रेरित करके पढ़ाई करना सिखाते हैं. केवल किताबी ज्ञान ही पर्याप्त नहीं बल्कि संगीत, खेलकूद, कंप्यूटर शिक्षा और आधुनिक टैबलेट के माध्यम से तकनीक आधारित शिक्षा भी दी जाती है. शिक्षकों की प्रतिबद्धता और सकारात्मक दृष्टिकोण इस स्कूल की सफलता का मुख्य कारण है. यहाँ शिक्षक पाठ्यक्रम के साथ साथ बच्चों के आंतरिक गुणों, कला, खेलकूद में उनकी रुचि और तकनीक के उपयोग को सिखाकर उनके सर्वांगीण विकास पर भी जोर देते हैं. पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को विभिन्न प्रतियोगिता में भी भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता है ताकि वे अपने भविष्य में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सके. वर्तमान में इस स्कूल में 400 से ज्यादा छात्र पढ़ रहे हैं. आज इस स्कूल की लोकप्रियता गांव की सीमाओं से बाहर निकलकर दूसरे जिलों तक भी फैल गई है. परिक्रमा के लिए अहमदाबाद से मैं प्रवेश अड़ियचा.
All right, so this proves that where there is a will, there is a way. And we are seeing that a lot of, not just schools, but government organizations are coming back to life. If you try to improve them, they can be improved. The, you know, the work culture can be improved and they are kind of giving, you know, being given a kind of an overhaul. All right, friends, let's move on. Well, today is a festival time, and you know why. Sarfirozi gave you a hint at the beginning of the program. We are celebrating Anand Chaturdashi today. And Anant Chaturdashi is very important because this festival is dedicated to Lord Vishnu and is observed and celebrated all over the country. It's marked on the 14th day of the moon's waxing phase during the month of Bhadrapad. According to Agni Puran, the Ananta, that is the Shesh, the divine serpent manifestation of Vishnu, is venerated on this occasion to free adherents from sins. Ananta Chaturdashi is also marked as the last day of the 10-day long Ganesh Chaturthi festival and is called Ganesh Chaudas, when devotees bid adieu to the Ganesh deity by immersing, or as we call, visarjan of his idols in water. And friends, festivals are always nice. They must foster a lot of love, togetherness and community building, and it should not be across religions. I say that, Sir Ferozi, that Indeed. Festivals should not come at the cost of any life, animal or human, or for that matter, nature.
त्योहारों का जो मकसद उद्देश्य होता है वो होता यही है कि अलग अलग जो समाज के लोग हैं इकट्ठा आए एक साथ मिलकर इन त्योहारों को मनाए.
हाँ, जो भी थोड़ी थोड़ी कुरीतियां आ गई हैं उसको हमें करेक्ट करना चाहिए और हो रहा है. मेनी पीपल नाउ आर टेकिंग आर यूजिंग दोज आइडल्स मेड ऑफ गणेश विच आर मेड ऑफ मड और क्ले, जिसमें कोई पेंट नहीं, कोई रंग नहीं, ताकि इमर्शन करें जब नदी में तो नदी पल्यूट नहीं,
हानिकारक ना हो.
और समटाइम्स इफ दे आर यूजिंग पेंट्स and they are creating these artificial ponds within a community, within a block,
usmein immerse karte hain.
Yes, and which is very wise thing to do. So I think we need to kind of have a, you know, at the risk of sounding, well, I don't want to be a, you know, kind of poor, be a damp squib or a dampener, but I tell everybody and I tell my friends, I share with my friends that we need to reset our festivals a little bit across all religions and make them more environment friendly, human friendly. Let's talk about what's happening in Mumbai. Maharashtra to gadh hai Ganesh festival ka.
Jab Maharashtra ki baat karte hain to Lal Bagcha Raja hume yaad aa jata hai.
Absolutely. To wahan kya ho raha hai Maharashtra mein, hum kyun bataye, hamare correspondent wahan hai Bhavna, unse sunte hain ki kya ho raha hai wahan.
Around 6,500 Sarvajanik Ganpati adults and 1.75 crore household Ganpatis will be immersed today in Mumbai at 65 natural water bodies and 205 artificial ponds created for the purpose. Heavy police deployment at particular immersion spots like Girgaon Chowpatti, Dadar, Juhu, Versova and Pavai. For women's safety, Nirbhaya squad will be patrol the streets beside police women dressed in plain clothes. Bhavna, Akashwani News, Mumbai.
और लालिमा, छत्रपति संभाजी नगर में भी सुबह से ही ढोल नगाड़ों की धुन के साथ गणेश विसर्जन हो रहा है. वहां से भी हमारे पास एक रिपोर्ट है.
गणपति को 64 कला और 14 विद्याओं का अधिपति माना जाता है. इसी के चलते महाराष्ट्र में गणेशोत्सव के दौरान कई ऐसे आयोजन किए जाते हैं जिससे आम जनता, विशेष रूप से बच्चों तथा युवाओं के कला गुणों को निखार मिलता है. इस उत्सव में कई युवक गणेश पंडालों में तरह तरह की झांकियां दिखाने में व्यस्त होते हैं, तो कई युवा अनंत चौदस की झांकी के लिए ढोल बजाने की प्रैक्टिस करते दिखते हैं. छत्रपति संभाजी नगर में हर बार की तरह इस बार भी कई आकर्षक झांकियां देखने को मिली, जिनमें उत्तराखंड के चार धामों में प्रसिद्ध बद्रीनाथ मंदिर की झांकी तथा लंका विजय के पश्चात पुष्पक विमान से अयोध्या लौट रहे प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान जी की झांकी विशेष है. कई गणेश मंडलों ने बतौर अध्यक्ष मुस्लिम व्यक्ति को चुनकर कौमी एकता का संदेश दिया, तो दूसरी ओर कई गणेश मंडलों ने रक्तदान और चिकित्सा शिविरों के माध्यम से सामाजिक दायित्व का निर्वहन किया है. आज समापन हो रहे इस उत्सव के दौरान पूरे शहर में जय गणेश के जयकारों के साथ साथ ढोल नगाड़ों की गूंज सुनाई पड़ रही है. परिक्रमा के लिए छत्रपति संभाजी नगर से मैं हर्षवर्धन दीक्षित.
गणपति बप्पा मोरिया. Why we call Ganpati, Ganpati? Because Ganesh, because Gan means a group. It could be any group. You know, we have a family group, we have a friends group. Nature mein dekhe to there is a group of rivers, a group of mountains, a group of trees. तो उनके जो ईश हैं, हर गण के ईश, वो है गणेश भगवान. एंड बिफोर वी स्टार्ट एनी प्रोग्राम वी टेक द नेम ऑफ भगवान गणेश बिकॉज इट इज सेड दैट ही इज विघ्नहरण. किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले गणेश जी का नाम लें तो मतलब वो हमारी वो ऐसी एनर्जी देते हैं हमें कि हमारे कोई भी आगे
विघ्न जो है वो रुकते नहीं है.
कोई विघ्न आए तो उसको हर लेते हैं. सो नाउ लेट्स गो टू, आई वाज थिंकिंग लेट्स गो टू पुणे.
जी बिल्कुल.
The procession was led by 5 main Ganesh idols, followed by hundreds of other Ganesh mandals who had lined up well before the scheduled time. The teams of drummers in traditional attires and saffron flags are accompanying each Ganesh idol, and the whole atmosphere is charged with enthusiasm, and thousands of people have gathered to witness this extravaganza. The festival is witnessing transformation, especially with regard to the exhibits prepared by the Ganesh mandals on contemporary issues like Operation Sindoor, among others. Manoj Kshirsagar, Akashvani News, Pune.
Well, Sardar Vallabhbhai Patel ji had also insisted on celebrating Ganesh ji's, this festival as a form of community bonding, and it became really big over the years. And we just hope that we are taking care of the environment as we fondly celebrate Ganesh festival. All right, let's move on. And recently, Sir Ferozi, we had the Singapore Prime Minister Lawrence Wong coming to India.
Ji, bilkul.
The 16th India-Singapore Defence Working Group meeting held in Singapore on the 4th of September. It was chaired by the Joint Secretary on International Cooperation in the Ministry of Defence, Mr. Amitabh Prasad, and Singapore's Director, Ministry of Defence, Colonel Daxon Yap.
और लालिमा बैठक में पिछले रक्षा मंत्रियों की वार्ता और विभिन्न द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पहलों के दौरान लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की गई. विचार विमर्श, भारत और सिंगापुर के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रोडमैप पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री श्री लॉरेंस वोंग के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक के बाद जारी नवीनतम संयुक्त वक्तव्य निर्देशित था.
ये तो ऑफिशियल लेवल की बात हुई, बट अदरवाइज वी कैन से दैट वी हैव लॉट्स टू लर्न फ्रॉम सिंगापुर. हाउ दे कीप द सिटी सो क्लीन, इट्स सो सिक्योर, द लॉज आर स्ट्रिक्ट एंड एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, परफेक्ट ऑर्डर देयर. वेल फ्रेंड्स, एज 2025 मार्क्स 60 ईयर्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर, बोथ कंट्रीज हैव अग्रीड टू फर्दर स्टेप अप डिफेंस कोऑपरेशन. एंड दिस मीटिंग विच यू जस्ट टॉक्ड अबाउट इज एक्चुअली सिग्निफिकेंट, स्पेशली इन द बैकड्रॉप ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट policy, in which Singapore has played a key role in promoting economic cooperation and cultural ties and developing strategic connectivity with countries in the region.
श्रोताओं, अब चलते हैं खेल के मैदान में और आपको वहां की हलचल देते हैं. सबसे पहले बात करेंगे पुरुष एशिया कप हॉकी की, जिसमें सुपर फोर के चरण के मैच में आज भारत का सामना चीन से होगा. ये मैच शाम 7:30 बजे बिहार के राजगीर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा. और लालिमा, आपके पास क्या जानकारी है?
टेनिस. इन टेनिस, इटलीज जैनिक सिनर हैज पावर्ड इन टू द यूएस ओपन मेन सिंगल्स फाइनल विद अ कमांडिंग 4-set विक्ट्री ओवर कैनेडाज फेलिक्स Aliassime. He will now face Spain's Carlos Alcaraz in a much anticipated final. In the women's singles, friends, Amanda Anisimova of the United States booked her place in the final with a gritty comeback win over Japan's Naomi Osaka. She will now challenge defending champion Aryna Sabalenka of Belarus, who earlier overcame Jessica Pegula of the US in straight sets.
आइए अब बात करते हैं उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिवस है. इस क्रम में हम सबसे पहले भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानियों को याद करेंगे.
जी,
इन टुडेज एपिसोड वी विल टॉक अबाउट हाउ द ब्रिटिश गॉट फुटहोल्ड इन मराठा लैंड, द करेज ऑफ शरद चंद्र बोस एंड द एग्नी ऑफ पार्टीशन.
द मराठा एम्पायर हैड बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर.
When the Peshwa King Madhav Rao died, Raghunath Rao sought the support of the British to be installed as Peshwa against Madhav Rao. It was on this day in the year 1774 that the British supported Peshwa Raghunath Rao to reconquer Pune.
But he was soon removed from the seat of Peshwa due to opposition by other Maratha rulers. Raghunath Rao sought help from the British again and signed the Treaty of Surat in March 1775. Via this treaty, the British promised to give Raghunath Rao military assistance in exchange for control of Salsette Island and Basin Fort.
Later on, It was because of this Treaty of Surat that in the First Anglo-Maratha War, the Maratha forces led by Nana Fadnavis had to fight with the combined forces of the British and Raghunath Rao.
This is how the British Empire was given strength by the infighting nature of Indian royalty.
Today is also the birth anniversary of Sarat Chandra Bose. Born in 1889 at Cuttack in Odisha, he was the elder brother of Subhash Chandra Bose. He qualified as a lawyer in 1911 and went to England.
With the legendary Nripendranath Sarkar as his mentor, Sarat Chandra achieved great fame as a barrister. He began a successful legal practice upon his return to India, but later abandoned it to join the civil disobedience movement.
In a report of the then Government of India's Home Department, he was described as the power behind his brother Subhash Chandra Bose and the financier of the civil disobedience movement in Calcutta.
He established a news agency, Orient Press Agency, in 1929. In the 1940s, he started the paper, The Nation.
For some years, Sarat Chandra Bose also indulged in electoral politics and held various positions. Sarat Chandra believed that nothing which is morally wrong is politically right. This served as his guideline throughout his life.
Sarat Chandra Bose was the first to protest against the partition of Bengal and Punjab. He consistently opposed the partition, both before and after the publication of the Mountbatten Plan. It was on this issue that he resigned from Congress in January 1947 and started a protest campaign in February 1947.
Soon after India achieved her independence on 15th of August 1947, Sarat Chandra advocated the setting up of a regional organization with India, Pakistan, Nepal, Burma, and Ceylon as its constituent members. He stood for the unity of Asia's southeastern nations as well.
Also, in August 1947, Sarat Chandra Bose formed the Socialist Republican Party, and in 1949, Sarat Chandra formed the United Socialist Organization that sought to bring all the socialist forces of the country on a common platform.
Sarat Chandra Bose was a true...
All right, let's take a look at some important people who were either born on this day or passed away on this day.
जी बिल्कुल लालिमा सबसे पहले याद कर रही हैं मशहूर सरोद वादक और भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे बड़े घरानों में से एक मेहर घराने की नींव रखने वाले अलाउद्दीन खां को इन्हें 1958 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था अलाउद्दीन खां ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को दुनिया के कई देशों में लोकप्रिय बनाने का काम किया इन्हें 1952 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा भी सम्मानित किया गया
वी कैन रिमेम्बर यश her today and we know him as a very popular film producer films like Ye Raaste Hain Pyar Ke Mujhe Jeene Do also Guide and you know there are many films like Jewel Thief Prem Pujari Hare Rama Krishna and so on and
और राकेश आज हम जी बिल्कुल राकेश रोशन को याद कर रहे हैं ये अभिनेता निर्माता निर्देशक और पटकथा लेखक हैं इनका आज जन्मदिन है राकेश रोशन ने 1970 से 90 के दशक में बतौर अभिनेता कई फिल्मों में काम किया 1987 से बतौर निर्देशक राकेश रोशन ने सिने प्रेमियों के लिए एक से बढ़कर एक फिल्में बनाई इनकी लोकप्रिय फिल्मों में खुदगर्ज खून भरी मांग कोई मिल गया और कृष आदि शामिल हैं
लेट्स रिमेंबर धन सिंह थापा टुडे Paramveer Chakra. He was an Indian military officer and recipient of the Paramveer Chakra, India's highest military decoration. He was commissioned into the 1st Battalion, 8 Gurkha Rifles in 1949. Let's move on and talk about Purnima Shresth. She was born on this day. You know who she is? Let me tell you. We're talking about Sushma Shresth. Friends, she's an Indian playback singer. Yes, you must have heard her. That's why I said, do you know her? She started off as a child artist and she became a leading playback singer in Bollywood during the 1990s and she sang many songs in her childhood including Jaane Tu Ya Jaane Na and music director R.D. Burman gave her some of her most memorable songs Ek Din Bik Jayega Maati Ke Mol you remember?
Yaadon Ki Baarat Kaun Bhool Sakta Hai Is Tarah Ke Geeton Ko Kaun Bhoolta Hai
Bilkul Teri Hai Zameen Tera Aasmaan Tera Mujhse Hai Pehle Ka Na Tha Koi Kitne Sundar Wo Gaane The Na La Jawab Ekdam
Ji और आज क्रिकेटर देवांग गांधी का भी जन्मदिन है। देवांग गांधी का करियर मुख्य रूप से घरेलू क्रिकेट पर केंद्रित रहा। इन्होंने बंगाल के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन किया और अपनी बल्लेबाजी में स्थिरता दिखाते हुए खुद को स्थापित किया। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अधिक मौके नहीं मिले, लेकिन घरेलू क्रिकेट में इनकी मेहनत और समर्पण ने इन्हें क्रिकेट जगत में विशिष्ट स्थान दिलाया।
वी ऑल्सो सेलिब्रेट बर्थडे ऑफ द इंडियन वेट लिफ्टर लवप्रीत सिंह। Time is less. We could go on and on. On that note, it's time for us to bid adieu, right, Sarfirozi?
Ji, bilkul.
So it's time for us, Lalima Aneja Dang and Sarfirozi, to say namaskar. Bye-bye. We'll see you soon. Take care. Be good.